जय गोपी जाना वाला भाग गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
जय विष्णुपाद परमहंस फौजी का आचार्य अष्टोत्तर अष्टाशीष श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस कौन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवा द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस फौजी का आचार्य अष्टोत्तर अष्टाशीष श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती साटू महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 29 से 32 तक श्लोक संख्या 29 और 30 का तात्पर्य नहीं है तो उन श्लोकों को हम पहले उच्चारण कर देते हैं फिर 31 और 32 बोर्ड पर लिखे हैं अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय तस्याम तुम कर हेचित शौरी वासुदेव कृतोदह देवक्या सूरया सार्धम प्रयाणे रथम आहुरहत कुछ समय पूर्व देववंश या शूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ उग्रसेन सुता कंसा स्वसुप्रचिकीर्षया
रश्मिन हयानाम जग्राह रोकमय रथ शतय व्रतः। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। चतुशतम परिभ्रहम गजानाम हेम मालिनम अश्वाना आयुतम सार्धम रथानाम च त्रिषट शतम दासीनाम सुकम सुकुमारीणाम द्वेशते समलंकृते दुहित्रे देवका प्रादात आने दुहित्र वत्सला चतुशतम परिबर्हम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम आयुतम सार्धम रथानाम च त्रिषट शतम दासीनाम सुकुमारीणाम द्वेशते समलंकते दुहित्रे देविकः प्रादात् याने दुहित्र वत्सला। बोलिए चतुशता परिबर्हम गजानाम देव मालिनाम समलंकते दुहिते देव का प्रादात दुनने द्रुहित वत्सलः चतुशत परिबर्हम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम साधम रथानाम च त्रिषट शतम दासीनाम सुकुमारीनाम द्वेशते समलंकते दुहित्रे देवके प्रादात आने दुहित वत्सलः चतुशता परिबर्हम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम आयुतम सार्धम रथानाम च त्रिषट्शतम् दासीनाम सुकुमारीनाम द्वेशते समलंकते दुहित्रे देवका प्राद्यात् याने दुहित वत्सला। माताजी चतुशत परिब्रह्म गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च त्रिषट शतम दासीनाम सुकुमारीणाम देशते समलंकटे दुहित्रे देवके अप्राद्यात याने दुहित वत्सलः चतुशतम परिबर्हम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च त्रिषट्शतम् दासीनाम सुकुमारीणाम द्वेशते समलंकते दुहित्रे देवका प्रादात् याने द्रुहित वत्सलः।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की चतुशतम 400 परिबर्हम दहेज गजानाम हाथियों के
हे ममालिनाम सोने के हारों से सजे, अश्वानाम घोड़ों के, आयुतम 10,000, सार्धम साथ में, रथानाम रथों के, चा तथा, त्रिषटशतम 600 का तिगुना, 1800, दासीनाम दासियों के, सुकुमारिणाम अत्यंत जवान तथा सुंदर अविवाहित लड़कियां, द्वे दो, शतय 100, समलंकते गहनों से सज्जित, दोहित्रे अपनी पुत्री को, देवकः राजा देवक, प्रदात भेंट स्वरूप दिया, याते याने जाते समय, दुहित्र वत्सलः अपनी पुत्री देवकी को अत्यधिक चाहने वाला। अनुवाद, देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह था, अतः जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। दोहराइए पीछे, देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह था, अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ, 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता में अपनी पुत्री को दहेज देने की प्रथा दीर्घ काल से चली आ रही है। आज भी उसी प्रथा का पालन करते हुए धनवान पिता अपनी पुत्री को भरपूर दहेज देता है। चूंकि पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, इसलिए वत्सल पिता अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति दहेज देता है। इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है, किंतु देवक ने देवकी को जो दहेज दिया वह सामान्य नहीं था। चूंकि देवक राजा था, अतएव अपने राजसी पद के अनुसार उसने उपयुक्त दहेज दिया। यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति विशेष रूप से कुलीन ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से आशा की जाती है कि वह दिल खोल कर यथेष्ट दहेज दे। विवाह के तुरंत बाद पुत्री अपने ससुराल जाती है, और यह भी प्रथा है कि अपनी बहन के प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए दुल्हन का भाई उसके साथ बहनोई के साथ साथ जाए। कंस इसी प्रथा का पालन कर रहा था। मनाश्रम धर्म समाज में, जिसे आज गलती से हिंदू समाज कहा जाता है, ये पुराने रीति रिवाज पाए जाते हैं। इन पुराने रीति रिवाजों का यहाँ पर सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानतमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नम ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि हमने भगवद्गीता के दशम स्कंध में प्रवेश कर लिया है। बहुत लंबी परीक्षा के बाद मुझे याद है जब मैंने टेंपल ज्वाइन किया था 2004 में, तब तीसरा स्कंध चल रहा था। तो 2004 से तीसरा स्कंध चल रहा था कर्दम मुनि का प्रसंग, और आज हो गया 2019, 15 साल की लंबी 10वें स्कंध में प्रवेश किया है। और ये पहला अध्याय 10वें स्कंध का, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का परिचय दिया जा रहा है, बैकग्राउंड बताई जा रही है कि कैसे पृथ्वी माता बहुत दुखी हो गई, ऐसे राजा पृथ्वी पर आ गए जो असुर थे, पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। तो सभी देवतागण इकट्ठे हुए ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी सबको क्षीर सागर के तट पर ले गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनके हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु ने ज्ञान प्रकाशित किया कि मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूँ, और सभी देवताओं को भी आदेश दिया कि वो भी यदुवंश में जाके प्रकट हों, और सभी देवताओं की स्त्रियों को भी आदेश दिया कि वो उनकी पत्नियां बन के प्रकट हों। उसके बाद फिर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कैसे बलराम जी प्रकट होते हैं, कैसे सुभद्रा जी प्रकट होती हैं, और कैसे फिर भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट होने वाले हैं। तो बताते हैं कि मथुरा एक नगरी है, पिछले श्लोक में मथुरा का गुणगान किया गया कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं, तो वो आध्यात्मिक जगत से अवतरित है वो धाम। फिर बताया कि उस मथुरा में यदुवंश के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन की बेटी थी देवकी, और उग्रसेन के पुत्र थे कंस, और फिर उनके देवक राजा की पुत्री थी यदुवंश में देवकी, उससे वसुदेव जी ने विवाह किया। और जब कंस ने उग्रसेन सुतः कंस स्वसुप्रिय चिकित्सया रथमेन्य महान जग्रह रौकमय रथ शतई व्रता, और फिर जब वो जाने लगे रथ पे बैठ के वसुदेव और देवकी, तो कंस जो उसका कजन भाई था उसके हृदय में इतना प्रेम उठा कि उसने बोला ठीक है मैं आपको घर में छोड़ के आऊंगा। तो उन्होंने उस रथ की रस्सी अपने हाथ में ले ली और सैकड़ों सुनहरे रथों से वो घिरा हुआ था, रौकमय रथ शतई व्रता, है ना। उसके बाद फिर आज का श्लोक है, इसमें 31 और 32 श्लोक में राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी को जो दहेज दिया वो पूरा वर्णन है। चतुशता पारिब्रह्म, पारिब्रह्म का मतलब है दहेज, चतुशता गजानाम हेम मालिनाम, कितने हाथी दिए 400 हाथी। हाथी कैसे थे? हेम मालिनाम, हेम मतलब सोने की मालाओं से सुसज्जित, और कितने दिए 400 हाथी दिए। अश्वनाम अयुतम सार्धम, सार्धम मतलब साथ में, कितने घोड़े दिए 10,000 घोड़े दिए। और रथानाम त्रिशतम, और रथ कितने दिए 1800 रथ दिए। और दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकते, और साथ में 200 दासियां दी, फटे पुराने कपड़ों में नहीं, दासियां थी सजी हुई एकदम अलंकृत, है ना। दुहित्रे देवका प्राद्यात याने दुहित वत्सला, प्रेम से, बहुत प्रेम था अपनी बेटी से, इतना दे दिया। 400 हाथी सोने की मालाओं के साथ सुसज्जित, और 10,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 सुसज्जित युवती दासियां, है ना, ये दहेज में दिया। तो कोई कहेगा ये क्या भागवतम ये सब चीजें क्यों बताई जा रही हैं इतना दहेज दिया, और कई जगह बताया गया भागवतम में दहेज के विषय में। तो भागवतम तो अमल पुराण है, है ना, तो यहाँ पे ये सब बातें क्यों की जा रही हैं। और भागवतम के प्रारंभ में ही घोषणा की जाती है इसमें क्या बताया जाएगा ना, धर्म प्रोजित कैटवत परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्र अनुमूलनम। श्रीमद भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर सद्यो हृदय अवृद्धते अत कृतवी सुषभि तत्क्षणात्। कि हर प्रकार के धर्म को झाड़ू मार के भगा दिया गया भागवतम से। परमो निर्मत सराणाम सताम केवल परम हंसों के लिए है जो कि द्वेष से रहित है। और इस भागवतम का ये वास्तविक वस्तु क्या है, इसमें वास्तविक वस्तु की चर्चा हो रही है। वैद्यम वास्तविक अत्र वस्तु, वास्तविक वस्तु की चर्चा हो रही है जिससे कि तीनों तापों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये भागवतम का ग्रंथ वेदव्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में इसकी रचना की है, फिर किसी और ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। और जो इसको पढ़ लेगा सही तरीके से, जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव, जो इसको सही भावना से विनीत भाव से इसका श्रवण करेगा अपने हृदय में कृष्ण को कैद कर लेगा। तो ऐसे ग्रंथ में ये क्या एक राजा ने अपनी बेटी के लिए दहेज दिया है, ऐसा वर्णन क्यों हो रहा है ना। और बताया गया इसके बाद वो वास्तविक वस्तु क्या है जिसकी भागवत में चर्चा की गई है, सव ए पुंसो परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। जब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि कलयुग आ रहा है और पूरे शास्त्रों का सार बताइए, तो ये सार बताया गया कि हर मनुष्य का परम धर्म यही है भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जिसको पूर्ण संतुष्टि मिले। तो फिर ऐसे ग्रंथ में जहां केवल अहेतु की भक्ति करनी है, ऐसी चीजों का इतना विस्तार में वर्णन, 400 हाथी वो भी सोने की माला डाले हुए, 200 दासियां वो भी सजी हुई, 1800 रथ, 10,000 घोड़े, इतना विस्तार में बताने की क्या जरूरत है, प्रश्न उठ सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में हालांकि परो धर्म की बात की गई है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म जो है वो भगवान से प्रेम करना है, ये तो आत्मा का धर्म हुआ। और क्योंकि हम इस संसार में हैं, भौतिक संसार में हैं, तो आत्मा आवृत है सूक्ष्म और स्थूल देह से, तो उसकी भी कुछ आवश्यकता हमें पूरी करनी पड़ेगी जब इस संसार में रहते हैं। तो अपने सूक्ष्म और स्थूल देह की आवश्यकताओं को भी इस ढंग से पूरी करें कि हमारे आत्मा की जो आवश्यकता है उसमें कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए। तो इस प्रकार के दो प्रकार के धर्म हो गए, एक पराधर्म एक अपराधर्म। जो पराधर्म है वो आत्मा का धर्म है, जो अपराधर्म है वो शरीर का धर्म है। तो अपराधर्म यानी कि शरीर का धर्म को हम सही ढंग से कर सके, इसके लिए भगवान ने वर्णाश्रम की स्थापना की। और फिर सूत गोस्वामी आगे बताते भी हैं, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विवाह भगिषा स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। वर्णाश्रम के पूरे समाज की जो विभाजन किया गया वर्ण और आश्रम के स्थान पे के आधार पे किया गया, जिससे कि उसका पालन करते हुए भगवान को व्यक्ति संतुष्ट कर सके। और यह वर्णाश्रम भगवान के द्वारा स्वयं बनाया गया, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि विधि अर्कर्तारम अव्ययम्। ये मैंने ही इसकी रचना की है, इसलिए प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि कुछ लोग वर्णाश्रम को धर्म वर्णाश्रम को हिंदू समाज कहते हैं, हिंदू समाज नहीं है। वर्णाश्रम पूरे मानव समाज में स्वाभाविक रूप से है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आजकल पूरे संसार में ये प्रचार चल रहा है कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, है ना। ये भारतीय समाज हिंदू समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे जातिवाद है। नहीं, जातिवाद वर्णाश्रम का विकृत रूप है। ये जातियां जो हैं गुण और कर्म के अनुसार स्वाभाविक रूप से रहती हैं। स्वाभाविक रूप से समाज में कोई ऐसा वर्ग होगा जो बुद्धिजीवी होगा, स्वाभाविक रूप से समाज में एक ऐसा वर्ग होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहेगा, शासन करना चाहेगा, स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा वर्ग होगा जो कि धन कमाना चाहेगा, वैश्य प्रवृत्ति का होगा, और स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा वर्ग होगा जो कि दूसरों की सहायता करेगा, सहयोग देगा, उनकी सेवा करेगा, शूद्र स्वभाव का होगा स्वाभाविक रूप से। इसलिए भगवान ने उसको कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। और ये बांटने के लिए नहीं था कि इसमें हम भेदभाव करें, इसलिए था कि सब एक दूसरे से सहयोग करके क्या करें, पूरा समाज अपने परो धर्म को प्राप्त कर सके, भगवान को संतुष्ट कर सके। और इस वर्णाश्रम के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर की, हमारे मन की और आत्मा की आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। वर्णाश्रम का मुख्य आधार होता था गायों की रक्षा और वैदिक संस्कृति। तो गायों की रक्षा करते थे, कृषि करते थे, तो शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी, है ना। गाय से जो दूध मिलता था उस दूध से हमारे बुद्धि के जो तत्व हैं, जो टिश्यूज हैं, बहुत फाइन हो जाते थे और बड़े आसानी से हम आध्यात्मिक विषयों को समझ सकते हैं। तो गाय है, कृषि है, तो आपकी सारी के सारी आवश्यकताएं पूरी, प्रकृति में सब कुछ है। लेकिन आजकल दुर्भाग्यवश प्रकृति का हम इतना शोषण करते हैं, पूरी सिचुएशन बहुत जटिल हुई पड़ी है। तो ऐसे हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो गई शरीर की, मन को क्या चाहिए, मन की कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, कुछ सामाजिक नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं कि हम किसी से बोलचाल करें, लेन देन करें। तो उसके लिए चार वर्ण थे, चार आश्रम थे, इसमें लेन देन होता था, तो हमारे मानसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। और आत्मा की क्या आवश्यकता है, भगवान से प्रेम करना, क्योंकि जीवन बहुत सरल होता था, साधारण होता था, तो सारा समय और शक्ति हम क्या करते थे, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल करते थे। तो वनाश्रम को इतना ये साइंटिफिक सिस्टम है जिसे हमारे शरीर की, मन की और आत्मा की आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होती थी और मनुष्य क्रमशः अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता था। लेकिन आज के समाज में देखते हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई। तो हम लोग, आप लोग विशेषकर जो शहरी जीवन है, इतना जटिल है, इतना जटिल है कि हमें 16 माला जप करने में भी कितना संघर्ष करना पड़ता है और चार नियमों का पालन करने में भी कितनी संघर्ष करना पड़ता है। ये इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद शास्त्रों की गहराई से पढ़ना, अध्ययन करना, इसके लिए समय कहाँ बचता है। इतने शास्त्र पढ़े हैं, हमारी इच्छा होती है करने की, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि पूरे आसपास का समाज का वातावरण ही ऐसा है। ये शरीर है, शरीर है, परिवार है, परिवार को पालना है, कुछ धन कमाना है, धन कमाना आसान है, मनी प्लांट लगा लो पैसा तो उगता है। और धन कमाने के लिए शुरू से बच्चे को पढ़ाना, उसको डिग्री हासिल करवाना, कोचिंग सेंटर में जाना, कंपटीशन में जाना, उसको डिप्रेशन होना, टेंशन होना, ये करना, फिर उसके बाद नौकरी करना, दो दो घंटे ट्रेवल करना, वहाँ पे इतना ताम झाम, उसके बाद कुछ धन मिलता है, उसके बीच में कभी मेट्रो में माला हो रही है, कभी कहाँ माला हो रही है, सोते रोते कैसे होके ख़त्म कर रहे हैं किसी ढंग से। तो क्या हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना, इतना जटिल होता जा रहा है सारा संसार। तो इसलिए किस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां पे ये आध्यात्मिकता को अनुकूल करना बहुत आसान हो। और इसीलिए इस्कॉन के 7 उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी है कि पूरे मानव समाज को सादा जीवन, उच्च विचार की प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम केवल किताबी बातें सुनते हैं, प्रैक्टिकली कर नहीं पाते तो और कुंठा होती है, क्या करें, करना चाहते हैं कर ही नहीं पा रहे, कोई है ही नहीं। उम्र हो जाती है 60-70 साल, तब भी धन कमाना है क्योंकि परिवार का पालन करना है, आगे जो आगे की जनरेशन है वो उत्तरदायित्व तो नहीं उठा रही, क्या करें, पूरा सब जटिल हुआ पड़ा है। और ऐसे पूरे वनाश्रम में स्त्रियों की बहुत विशेष परिस्थिति होती है, क्योंकि स्त्रियां जो भगवान किसी जीवात्मा को स्त्री का शरीर देते हैं तो उसे अपेक्षा की जाती है कि स्त्री के गर्भ में एक और जीवात्मा आएगी और उस जीवात्मा की पहली गुरु होगी वो स्त्री होगी, कैसे उसको वो सही संस्कार देगी ताकि वो जो जीवात्मा मनुष्य देह प्राप्त करके सीधा भगवत धाम वापिस जा सके। तो स्त्रियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो उनके लिए एक अलग स्टेटस रखा गया कि उनका क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है। तो परोधर्म तो एक है कि हर जीवात्मा ने कृष्ण से प्रेम करना है, लेकिन अपरा धर्म वर्ण के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार अलग अलग है ना। क्षत्रिय का अलग धर्म होगा, ब्राह्मण का अलग धर्म होगा। क्षत्रिय का ये कहेगा कि युद्ध चा पलाय नाम, कि तू युद्ध छोड़ के वापिस नहीं आना, और ब्राह्मण के बोलेगा युद्ध में जाएगा ही नहीं। तो कंट्राडिक्टरी है, लेकिन दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, है ना, हर एक अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। तो हर की एक अलग स्थिति है, उसके अनुसार से वो अपने शरीर के धर्म का पालन करता है ताकि वो परो धर्म को प्राप्त कर सके। तो इसलिए वनाश्रम में वैदिक संस्कृति में विवाह होता है और विवाह के बाद दहेज दिया जाता है। दहेज क्यों दिया जाता है, क्योंकि मानव समाज को क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए एक आचार संहिता है, वो है मनु संहिता। और मनु संहिता में बताया गया कि दहेज दिया जाता है, क्यों देह दिया जाता है? कि साधारणतया मनोसंहिता के अनुसार पिता का जो धन है वो उत्तराधिकार में पुत्री को नहीं दिया जाता, केवल पुत्र में बांटा जाता है, स्त्रियों को नहीं दिया जाता। तो इसलिए दहेज के समय पिता प्रेमवश जितना दे सकता है अपनी बेटी को देता है, कि बाकी जो बड़ा बचा हुआ प्रॉपर्टी है, धन है, वो तो पुत्र को चली जाएगी, लेकिन ये जो मेरी बेटी जा रही है इसको मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं, तो ये मेरी बेटी के लिए एक आर्थिक सुरक्षा उसको प्रदान करती है। और वो जो धन है वो उसका बेटी का धन होता है, स्त्री धन कहलाता है, इसको कोई उससे ले नहीं सकता। और अक्सर देखते हैं माता जी लोगों को दहेज से बहुत प्रेम भी होता है, जो उनको पिताजी से प्राप्त हुआ होता है। देखते हैं हमारे माता जी के समय बहुत पुराना एक पलंग था, बस वो लकड़ी का था, वो टूटा फूटा, नहीं नहीं इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने, पिताजी ने दिया था, तो वो प्रेम होता है और उनसे कोई छीन भी नहीं सकता, ठीक है जब तक आप रखना चाहते हैं रखें। और वो क्या होता है, उसको संभाल के रखती हैं, और जब उसकी अपनी बेटी का विवाह होता है तो क्या होता है, फिर वो उसको निकाल के देती है। और अक्सर घर में लोग हैरान हो जाते हैं, जो पतिदेव होते हैं चिंता कर रहे होते हैं बेटी को दहेज कहाँ से दूंगी, तो माता जी चुपचाप रहती, मेरे पास है बचा हुआ जो मेरे पिताजी ने दिया था मुझे, मैंने संभाल के रखा हुआ है ना, और फिर वो आगे देती है। तो इस प्रकार से वो दहेज आगे जाता है। तो ये प्रथा थी, और ये प्रेम की अनुभूति है, प्रेम प्रकट हो रहा है, ये वॉलंटरी है, स्वेच्छा से है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, है ना। और हम देखते हैं भागवतम में कई जगह ऐसा वर्णन आता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 8 मुख्य उनकी मुख्य रानियां थी, उनमें अलग अलग स्थिति से अलग अलग परिस्थितियों में भगवान ने विवाह किया। तो जब सत्या का विवाह करना होता है तो राजा नग्न जीत होते हैं, और उन्होंने इस कंडीशन रखी होती है कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसे से करूंगा जो 7 पागल बैलों को बांध ले। तो भगवान के तो बहुत आसान था, भगवान अपना विस्तार किया, 7 बैलों को फटाफट बांध दिया। तो राजा नग्न जीत बहुत प्रसन्न हुए और सत्या का विवाह उनसे किया। जब विवाह किया तो राजा नग्न जीत ने क्या दहेज में दिया, तो शक्तिशाली राजा नग्न जीत ने दहेज के रूप में 10,000 गायें, 3,000 युवा दासियां, यहां तो 200 दी थी देवक ने, तो 3,000 युवा दासियां जो अपने गले में सोने के आभूषण पहनी थी। आज के बेचारी दुल्हन आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालती है तो वहां पे दासियां छोड़ो, हाथी सोने के हार डालते थे, गले में सोने के आभूषण पहनी थी तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थी। 9,000 हाथी और हाथियों के 100 गुना रथ, 9,000 हाथी थे और 100 गुना रथ कितने हो गए, 9,00,000 रथों के 100 गुना घोड़े, 9,00,000 घोड़े हैं और 100 गुने कितने हो गए, 9,00,000,000, और घोड़ों के 100 गुना नौकर, 9,00,000,000 नौकर, 9,00,000,000 नौकर, 9,00,000,000 घोड़े, 9,00,000 रथ और 9,000 हाथी। सॉरी कहां पार्किंग करते हो ना, यहां कोई अमीर व्यक्ति होगा अपनी पुत्री को कितनी देगा, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 10 गाड़ी 15 गाड़ी, वो देगा मेरी पार्किंग की जगह ही नहीं है। लेकिन यहां देखो क्या ऐश्वर्य था, क्या ऐश्वर्य था, कितने रथ, कितने वो। उसके बाद ये तो हुआ, फिर हम देखते हैं कि भागवतम में आगे आके सांब है ना, भगवान के जो पुत्र हैं, दुर्योधन की पुत्री का अपहरण कर लेते हैं, वह बहुत युद्ध होते हैं, उसके बाद वापस उनको बुलाते हैं, फिर से विवाह होते हैं। तो दुर्योधन भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, तो दुर्योधन भी बहुत बड़ा अच्छा उसने दहेज दिया अपनी पुत्री के प्रति, अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षीय हाथी दिए। 60 वर्षीय हाथी हस्तिनापुर से स्पेशल हाथी होंगे, तो 1200 उन्होंने हाथी दिए, 1,20,000 घोड़े, 6,000 सूर्य जैसे चमकते सुनहरे रथ और 1,000 दासियां जो गलों में रत्न जटित हार पहने थी। ये था, है ना, आप देखिए एग्जैक्ट नंबर बताए हुए हैं। अब किसी आम व्यक्ति को ये बातें बताएंगे, बोले माइथोलॉजी है, ये कहां संभव है, 9,00,000 नौकर, 9,00,000 नौकर कहां रहेंगे, सर्वेंट क्वार्टर्स कितने चाहिए होंगे कितने करोड़ रथ, कितने हाथी घोड़े, क्या करेंगे इनका। लेकिन ये ऐश्वर्य था और अपनी बेटी के प्रति इतना प्रेम है कि उसको दिखा रहे, यही नहीं, हम देखते हैं कि इवन नित्यानंद प्रभु की बेटी थी गंगा देवी, तो उन्होंने का विवाह किया तो उन्होंने दहेज में पूरा गांव दे दिया, पूरा गांव दे दिया। लेकिन ये वॉलंटरी होता था, स्वेच्छा से होता था। अगर किसी के पास धन नहीं है तो वो क्या करता था, अगर भगवान संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो अगर कुछ नहीं भी है देने को, कुछ ना कुछ फल दे दो, फूल दे दो। जैसे कि निमाई पंडित का जब विवाह होना था, तो निमाई पंडित के विवाह का जो प्रस्ताव था, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वनमाली, वो लेकर आए थे सची माता के पास। और निमाई पंडित ने सची माता ने पूछा, तो उस निमाई ने बोला हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। तो फिर वनमाली गए वल्लभाचार्य जी के पास, जो लक्ष्मी प्रिया जी के पिता थे। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला मैं बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हरी डक्की फल दे दूंगा बस। तो निमाई पंडित को, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको दहेज में क्या मिला था पहले विवाह में, 5 हरी डक्की फल मिले थे बस, ये हुआ। उसके बाद लक्ष्मी प्रिया जी ने अंतर्धान हो गई तो दूसरा विवाह किया विष्णु प्रिया जी। तो फिर बुद्धिमंता थे, उन्हें बोला नहीं ये जो विवाह होगा बहुत धूमधाम से होगा, तो उसे बहुत दहेज मिला उनको। तो इस ढंग से ये दहेज देने की प्रथा थी। और शास्त्रों में कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं कि जैसे तो साधारणतया लड़की का पिता दहेज देता था, लेकिन जब हम देखते हैं महाभारत में भीष्म पितामह माधुरी का हाथ मांगने गए उनके भाई के पास, तो उनके भाई था शाल्य, उसने बोला नहीं हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़के वालों को दहेज देना होता है। तो फिर भीष्म पितामह कहा मैं जानता हूँ, तो उन्होंने बहुत सा दहेज दिया। और अभी पीछे भागवतम के नवम स्कंद में हमने पढ़ा था कि राजा गद्दी थे और उनकी बेटी थी सत्यवती, तो उनसे रचिक ऋषि विवाह करना चाहते थे, और राजा गद्दी का इच्छा नहीं थी कि मेरी बेटी का विवाह इससे हो। तो उन्होंने क्या कंडीशन रखी थी, अगर आप विवाह करना चाहते हो तो दहेज में क्या लेके आओ, 1000 सूर्य चांद की चांदनी के समान चमकते हुए घोड़े, उसका एक कान दायां या बायां काला होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति रखी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वरुण देवी जी के पास गए और घोड़े लेके आ गए और फिर विवाह हो गया। तो ये दहेज देना एक प्रथा थी, एक रीति रिवाज था, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य था। वैदिक संस्कृति में जितने भी रीति रिवाज थे उनके पीछे मुख्य उद्देश्य होता था आध्यात्मिक शिक्षा को अनुकूल करना, स्पिरिचुअलिटी को अनुकूल करना। और स्पिरिचुअलिटी को अनुकूल करने का मतलब होता है भगवान से परो धर्म की ओर बढ़ना, कृष्ण से प्रेम की ओर बढ़ना, ये उसके पीछे मुख्य उद्देश्य था। लेकिन होता क्या है, समय के प्रभाव से हम जो वैदिक ये रीति रिवाजों के पीछे जो मुख्य सार है उसको भूल जाते हैं, और जो उसकी डिटेल्स है उसको याद रखते हैं, है ना, फॉर्म को याद रखते हैं, कंटेंट को भूल जाते हैं। कि ये सारे रीति रिवाज किस लिए थे, कि स्त्री सुरक्षित अनुभव करे, और अगर बाय चांस कभी उसका पति अकाल पहले शरीर छोड़ दे तो स्त्री को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास अपने पिता का दिया हुआ धन है, उससे वो अपना पूरा जीवन चला सकती है, ये एक सुरक्षा होती थी उसके लिए। और इसलिए होता था कि स्त्री हमेशा सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उसको बाहर जाके काम करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और अपने बच्चों को अच्छे ढंग संस्कार वो दे। लेकिन समय के प्रभाव से क्या हुआ कि ये दहेज देना स्वेच्छा नहीं रह गया, एक डिमांड बन गया, है ना, एक नेगोशिएशन हो गया। इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है, सार है, वो भूल गए, है ना। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज एक कथा सुनाते हैं कि अक्सर जो रीति रिवाज है उनके पीछे के हम मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं तो क्या होता है। तो कथा सुनाते हैं कि एक गाँव में 4 ब्राह्मण थे, उसमें एक वरिष्ठ था, बाकी 3 उसके असिस्टेंट थे। तो चारों इकट्ठे जाया करते थे नदी में स्नान करने के लिए। नदी में स्नान करते थे तो नदी के तट पर ही 4 तांबे के बर्तन होते थे, उसको वो लेते थे और सूर्य जी को अर्पण करते थे और फिर वापस वहीं रखकर दोबारा चले आते थे। अगले दिन फिर सुबह आते थे, स्नान करते थे। तो उसमें जो वरिष्ठ ब्राह्मण था उसने सोचा कि चारों तांबे के जो बर्तन हैं पात्र हैं एक जैसे ही लगते हैं, हर एक अपना अपना होना चाहिए, कभी भी कोई उठा लेता है तो ये ठीक नहीं है। तो इस बार क्या कि वो स्नान करने गए तो उन्होंने क्या किया, एक पात्र लिया उसमें मिट्टी भर के रख दी, ये पहचान करी कि ये मेरा है, और स्नान करने लगे अंदर गायत्री करके। जब बाहर आए, इससे पहले उनके जो 3 असिस्टेंट वो बाहर आ गए, बोले अरे ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण है इन्होंने अपने पात्र में मिट्टी भर के रखी है, ये ज़्यादा शुभ होगा। तो क्या किया उन्होंने भी अपने पात्र को मिट्टी से भर लिया। बाकी अब बेचारा ये ब्राह्मण जब बाहर आया तो अपने पहचान के लिए इसने रखा था कि इसमें मिट्टी भर के रखूँ ताकि मैं पहचान लूँ ये मेरा है, वो पहचाने नहीं पाया, अरे फिर वैसे के वैसे ही हो गए। तो भक्ति सिद्धांत सरिता कुमार आज उसमें शिक्षा देते हैं कि हम बिना सोचे समझे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, कुछ उद्देश्य पता नहीं होता। उन्होंने बोला कि दो चीजें होती हैं, एक अनुकरण एक अनुसरण। अनुकरण होता है खाली नकल मारना, अनु मतलब पीछे पीछे, करण मतलब खाली एक्शंस, खाली एक्शंस की नकल मारना, और अनुसरण मतलब पीछे पीछे शरण यानी कि सार को पकड़ना, शरण लेना। तो अक्सर हम लोग अनुकरण करते हैं, नकल मारते हैं ना कि ऐसा हुआ तो नकल मारी गई, समाज में दिखावा हो गया किसने कितना दहेज दिया। आप में से जो कुछ लोग पुराने देखते होंगे कि पहले विवाह होता था तो लड़की वाले पूरा डिस्प्ले करते थे, कितने कपड़े दिए, कितनी साड़ियां दी, कितने कोट पीस दिए, पैंट पीस दिए, सब पूरा डिस्प्ले, क्या फर्नीचर दिया, सबको पूरे गांव को भी पता होता था क्या क्या हो रहा है। और फिर वो दिखावा बन गया, फिर दिखावे से क्या क्या हुआ, वो मांग बन गई, फिर नेगोशिएशन होने लगी, और जब वो पूरी नहीं होने लगी तो जब बहू घर में आती थी उसको सताया जाता था, फिर डॉवरी डेथ्स होती थी, कितनी भोई उसको जला दिया जाता था। तो फिर जब ये मालूम चला कि पेरेंट्स को बाद में कि हमें अपनी बेटी को ये धन देना पड़ेगा, तो क्या करते थे, वो पुत्री जब होती थी तो घर में शोक मनाया जाता था। फिर थोड़ा और साइंस ने एडवांसमेंट कर लिया, आपको घर में मालूम चल जाएगा कि बेटी है कि बेटा है, अगर बेटी है तो जन्म ही क्यों दे, तो उसको मार दो, फिर उसको इन्फेंटिसाइड होने लगा, जो भ्रूण था उसकी हत्या होने लगी। तो ये सारी की सारी कुरीतियां शुरू हो गई, है ना। और यही नहीं, जैसे कि स्त्री को लेके सती की विधि थी, वैदिक शास्त्रों में सती बताया गया है, पति की मृत्यु हो तो पत्नी अकेले नहीं रह सकती, तो उसको क्या करती थी, वो अपने आप को चिता में लगा देती थी, इतना समर्पण होता था, है ना। इसी तरह से बाल विवाह होता था, है ना, जैसे ही लड़की 10-11 साल की होती थी उनका विवाह कर दिया जाता था, ताकि एक ऐसी उम्र आती है जब लड़का और लड़की का, युवक और युवती का आपस में आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ने से पहले ही उनको मालूम है ये मेरे पति है, तो मन स्थिर हो जाता था, इंद्रियां संयमित रहती थी, व्यभिचार नहीं होता था। तो कितना सुंदर यह दृश्य था, जिससे कि हमारा जो समाज है अपने परम लक्ष्य को भूले ना, ये सारी व्यवस्था इसलिए थी, लेकिन उस परम लक्ष्य को भूल गए, और ये आधुनिकरण, सो कॉल्ड आधुनिकरण हुआ, और इससे क्या हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पर हैं, सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी कृपा से हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ, हम देखते हैं कि 500 वर्ष पूर्व बहुत से ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी आए, स्त्रियों के प्रति शोषण हो रहा है, दहेज बंद करो, सती बंद करो, बाल विवाह बंद करो। तो ये बंद करने से कोई समाधान नहीं हुआ, समाधान हुआ नहीं, समाधान समस्या और जटिल होती जा रही है ना। जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं, प्रवृत्ति च निवर्ति च जना ना विदुरासुरा, है ना, ना शोचन ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। इस समाज में जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जानते नहीं क्या ठीक है क्या गलत है, और वो तरह तरह के जो समाधान भी ला रहे हैं, सॉल्यूशन भी ला रहे हैं, वो समस्या को हटा नहीं रहे बल्कि समस्या को और बढ़ा रहे, तो चल रहे हैं। क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति और अध्यात्मवादी व्यक्ति में क्या अंतर है, प्रभुपाद बहुत एक ही लाइन में उत्तर देते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अपना आनंद बाहर की वस्तुओं में ढूंढता है, और जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है वो अपना आनंद अपने अंदर ढूंढता है। जो वैदिक संस्कृति है वो अध्यात्मवाद को बढ़ावा देती है। वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है कैसे सेक्रीफाइस करना है, बलिदान करना है, कैसे अपनी चेतना को उत्कृष्ट करना है। लेकिन जो आधुनिक संस्कृति, तथा कथित संस्कृति है आधुनिक, वो हमें दिखाती है कैसे सुविधाओं को बटोरना है, धन इकट्ठा करके आसपास सुख सुविधाएं को बढ़ाना है, इससे हमें आनंद मिलेगा। बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है वो चेतना की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। हमारा आनंद चेतना पर निर्भर करता है, बाहर की सुविधाओं पर नहीं। हम चाहें तो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य दुखी है, क्योंकि उसकी चेतना उत्कृष्ट नहीं है। तो इसलिए जो तथाकथित सॉल्यूशंस भी हैं उससे समस्या और बढ़ गई। प्रभुपाद बहुत अच्छे ढंग से ये गीता के इसी अध्याय में, 16 अध्याय के प्रवर्तिम च निवर्तिम च जनना विद्रासुरा, इसमें बताते हैं, ध्यान से सुनिए इसका तात्पर्य। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं, जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान ना की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, है ना, भी स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है। तो आजकल पाश्चात्य देशों से शुभ क्यों नहीं स्वतंत्रता है, आप हमारा शोषण करेंगे। तो उस प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वतंत्रता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दासियां हैं। प्रभुपाद आगे क्लैरिफाई कर रही है, वो तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्रदान कर भी दी, आज सरकार का ये स्लोगन है लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, है ना, वो सोचते हैं कि अब लड़की को हम पढ़ाएंगे और वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, वो खुद धन कमा पाएगी, वो इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, वो पायलट बनेगी, वो खुद धन कमाएगी, वो किसी पर निर्भर नहीं है। तो क्या इससे ये समस्या का समाधान हो जाएगा? इससे क्या समाज की स्थिति बिगड़ी है कि सुधरी है? बिगड़ी है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे क्या होगा, वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसे बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, तारुण्य में पति द्वारा, बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अति रंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। बड़ी शुद्ध हिंदी है, इसका मतलब है जो इंग्लिश में लिखा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन हैज डिवाइज्ड अ पफ्ड अप कंसेप्ट ऑफ वुमन लाइफ, अननेसेसरली एक स्त्री जीवन को ऐसा पफ्ड अप कर दिया है कि फेमिनिज्म ऐसा बढ़ा दिया है कि आप लिबरेट हो जाएंगी, वुमेन लिबरेशन है, आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, फालतू का, और उससे स्त्रियों का शोषण और हुआ है। अब आगे सुनिए, अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। ये प्रभुपाद जी ने 1970 में तात्पर्य लिखा था, देखिए, और आगे 10,000 सालों तक बोले अब विवाह एक कल्पना बन चुकी है, आप लोग विवाह नहीं करना चाहते, इसलिए सरकार ने भी बोला LGBT अब आ गया, कोई बात नहीं विवाह मत करो, और विवाह के बाद संतान उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्त्रियां ये नहीं कहते आई एम चाइल्डलेस, वो बोलते आई एम चाइल्ड फ्री, कोई झंझट ही नहीं, क्यों बच्चा पैदा करें फालतू में है? क्यों फिर बच्चा पैदा फिर क्यों विवाह करें, बस स्टे इन है, लिव इन पार्टनर्स हैं, LGBT है, ये क्या है, ये स्त्रियों की स्वतंत्रता है, क्या इससे समाज सुधर रहा है? इससे कितना आप देखिए कितना पाप हो रहा है समाज में, और अभी परसों जो ओले बरसे थे इतनी भयानक रात थी वो, इतनी भयानक रात थी, मैं तो ये सोचा था आगे कलयुग में वास्तव में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि यज्ञ स्थली में क्या क्या ऊपर से बरसा, है ना, तो ऐसे ओले बरस है, ऐसे लग रहा है मलमूत्र गिर रहा हो, मांस हड्डियां गिर रही हों, इतना भयानक दृश्य था। ये सब क्यों, कि पाप बढ़ता जा रहा है, और पाप इसलिए बढ़ता जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस शरीर का धर्म का पालन कैसे करना है। तो ये आधुनिक समाज में प्रभुपाद लिखते हैं फाइनल सेंटीमेंट्स हैं, जो सूक्ष्म बातें हैं वो समझ में नहीं आती। यहां पे हम देखते हैं कि कंस हालांकि असुर था, उसको भी कुछ सूक्ष्म बातें थी, अपनी बहन से प्रेम करता था, है ना, प्रेम करता था, चलो मैं रथ के छोड़ के आऊंगा। कंस की भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि कंस यदुवंश में कैसे आ गया, असुर था वो, यदुवंश में तो अच्छे अच्छे राजा थे, तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि उग्रसेन का विवाह हुआ पद्मावती से, और पद्मावती बेटी थी राजा सत्य केतु की, जो विदर्भ के राजा थे, और पद्मावती बहुत सुंदर थी, उग्रसेन की पत्नी, कमल के समान उसका मुख था, और उग्रसेन उसे इतना आसक्त हो गया, बिना उसे कुछ खाता पीता नहीं था, हमेशा उसके साथ रहता था। तो विदर्भ के राजा सत्य केतु भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, तो उनको लगा कि मेरी पुत्री बारह दिनों से आई नहीं अपने घर में, तो उन्हें एक मैसेंजर भेजा, दूत भेजा राजा उग्रसेन को कि मेरी बेटी को कुछ दिनों के लिए भेज दो मायके। तो राजा उग्रसेन ने बोला ठीक है चले जाओ। तो पद्मावती अपने घर चली गई, और वहां गई तो पिताजी बड़े खुश हुए, अपनी पुरानी मित्रों से मिली, वो सहेलियों से मिली, तो अपनी सहेलियों के साथ वो एक पहाड़ पे गई, वहां एक सुंदर झील थी, वहां सब वो खेल रही थी, स्नान कर रही थी, और उसी समय एक असुर था जो कुबेर का दास था, नौकर था, उसका नाम था गोबिल, वो हवा में चल रहा था ऊपर से, उसने नीचे देखा पद्मावती की सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गया, उसने बोला कौन ऐसा मूर्ख पति होगा जिसने उसको अकेले छोड़ दिया, ये तो मेरे भोग के लिए बनी है। और फिर उसने देखा उसके पास शक्तियां थी, उसको मालूम चला उग्रसेन की पत्नी है, राजा सत्यकेतु की बेटी है, तो बोले ऐसे तो उसका भोग नहीं कर पाऊंगा, उसके पास इतनी शक्तियां थी, बिल्कुल उग्रसेन का रूप उसने धारण कर लिया हूबहू, और वैसी चाल, वैसी पोशाक, वैसी उसकी आवाज, वैसी बातचीत, और बड़ा मधुर गाने लगा। पद्मावती ने कहा ये आवाज तो जानी पहचानी है, जब वो स्नान करके बाहर निकली तो उसने देखा ये तो मेरे पति है, वो हैरान होगी आप यहाँ कैसे, बोले बस तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सका, तो फिर उसको ले गया, उसका उसने भोग किया, जब उसने भोग किया तो पद्मावती समझ गई ये मेरे पति नहीं है, तो उसने बोला कि तुमने मेरा सती व्रत को मेरा भंग किया है, मैं पति व्रता मेरे धर्म को तुमने भंग किया है, मैं तुम्हें शाप दूंगी। तो उसने बोला कैसे शाप दोगे, मैं तो असुर हूँ, असुरों का कार्य है दूसरों की पत्नियों का बलात्कार करना, मैंने तो अपना कार्य किया है। बोले लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, मैं शाप तुम्हें जरूर दूंगी। तो उसने बोला कि ब्रह्मा जी ने हमारी उत्पत्ति एक विशेष उद्देश्य से की है, कि जो लोग हम तो धर्म को जानते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा जी ने हमारी उत्पत्ति इसलिए की है कि जो लोग अपने आप को दिखाते हैं कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, वो धर्म का पालन नहीं करते, हम जाके उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। तो उसने बोला लेकिन मैं तो पत्नीव्रता धर्म का पालन कर रही थी। बोले कहाँ का पत्नीव्रता धर्म पालन कर रही थी, अगर पतिव्रता धर्म पालन किए होते तुमने कैसे तोड़ा, तीन बातें की हैं तुमने गलत, कहते तीन ऐसे उसने बताया कि तीन अवस्थाओं में पतिव्रता धर्म का पालन नहीं हुआ है। कि सबसे पहले अगर पत्नी पति को छोड़ किसी दूसरे स्थान पर सो रही है इसका मतलब वो पतिव्रता नहीं है, ये असुर था उसको इतना धर्म मालूम था, और अगर पत्नी पति को छोड़ कहीं और काम करने जाती है तो वो सती नहीं है, और तीसरा जो पति की अनुपस्थिति में अपने आप को सजे सवारे तो वो कैसी सती है। तो पद्मावती को बहुत क्रोध आ रहा था, बोले मैं अपने पिता के घर में आई हूँ प्रेम से, उनका प्रेम से मुझे बुलाया, मुझे कोई लालच नहीं था, मेरे अंदर कोई काम वासना ही नहीं थी, मैं तुम्हें शाप दूंगी। कैसे शाप दोगी, बोलते तुम तो पिता के प्रेम में इतने अंधी हो गई कि अपने पति को भूल गई, कैसी सती पतिव्रता स्त्री हो तुम, सारा लॉजिक उसके पास था उस गोविल असुर के पास। तो वो तो चला गया बेचारी, पद्मावती बहुत उदास हो गई, और फिर उसकी बात अपने अपने सहेलियों को बताई, उसके पिता को मालूम चले, फिर पिताजी ने उसको वापस भेजा उग्रसेन के पास। अब ये इतनी उदास थी क्योंकि ये पछता रही थी, उनकी कोई ऐसी मंशा भी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा मैं इसका फिर गर्भपात करती हूँ। उसने कई तरह की औषधियाँ का प्रयास किया लेकिन गर्भपात नहीं हो रहा था, और अंदर से गर्भ बोलने लगा तुम मुझे नहीं मार सकती, क्यों मारने का प्रयास कर रही हो, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं, मैं पिछले जन्म में काल नेमी था और विष्णु ने मेरा वध किया था, अब मैं बदला लेने के लिए आया हूं तुम्हारे गर्भ में, और तीनों लोगों को मैं प्रताड़ित करूंगा। तो वो था कंस, है ना। तो कंस भी हम देखते हैं कि इवन जो गोविंद नामक असुर था वो भी पूरे धर्म का ज्ञाता था, ये वैदिक संस्कृति होती थी, और वो भी कंस जैसे असुर में भी कुछ फाइनर सेंटीमेंट्स थे, अपनी बहन को लेकर प्रेम था, वो तो बाद में बात है कि आकाशवाणी हुई तो ऐसे हो। इसलिए हम जितना इस संस्कृति को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे लिए भक्ति करना और आसान हो जाएगा। और हम देखते हैं प्रभुपाद में भी, प्रभुपाद ने एक बारी श्रुताकीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, श्रुताकीर्ति प्रभु पहले ब्रह्मचारी थे बाद में गृहस्थ आश्रम में गए, फिर भी वो प्रभुपाद के सेवक बने रहे। तो श्रुताकीर्ति प्रभु का एक 6 महीने का बेटा था मायापुर चंद्र, तो एक बार प्रभुपाद ने श्रुताकीर्ति प्रभु को बुलाया कि तुम आओ और नंद कुमार को भी लेके आओ। नंद कुमार भी पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी पहले ब्रह्मचारी थे, विग्रस्त आश्रम में चले गए थे। तो दोनों आए तो प्रभुपाद ने दोनों अपने कमरे में ले गए और बोला वो मेरा व्हाइट बैग है वो लेके आओ। तो शतक गुरु गए व्हाइट बैग उठा के लाए। व्हाइट बैग प्रभुपाद का होता था, उसमें प्रभुपाद अपने बहुत ही व्यक्तिगत सामान रखते थे, चेकबुक वगैरह। तो उसमें से उन्होंने निकाला एक $50 का नोट निकाला, उन्होंने नंद कुमार को दिया, फिर एक और $50 का नोट निकाला, श्रुदा कीर्ति को दिया। मैंने प्रभुपाद ये क्या? बोले आपके बच्चों के लिए। प्रभुपाद आप हमारे गुरु हैं, हमें आपको देना चाहिए, आप हमें क्यों दे रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं आपके लिए नहीं, आपके बेटों के लिए, जाओ। तो प्रभुपाद ने दिया उनको। तो दिखाते हैं प्रभुपाद एक दादा का रोल प्ले कर रहे हैं कि मेरे शिष्य के बेटे हैं, एक ग्रस्त आश्रम में गए, ज्यादा नहीं $50 का ही नोट दिया। तो ये फाइनर सेंटीमेंट्स होते थे कुछ, तो इसी ढंग से पिता भी अपनी पुत्री को देता था। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, विषय बहुत बड़ा है, कि जितना हम वैदिक संस्कृति को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे उतना हम भक्ति करना हमारे लिए आसान होगा। और यह संस्कृति को स्थापित करना हम सब भक्तों की, हमारे पूरे समुदाय की जिम्मेवारी है। संस्कृति का अर्थ है हम किस प्रकार की पोशाक डालते हैं, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किस प्रकार का खान पान करते हैं, किस प्रकार की हमारी जीवन शैली है, उससे प्रचार होता है। भक्तों को बाहर के समाज को लगना चाहिए ये लोग इस कौन का एक समुदाय है ना, इनकी इस प्रकार की जीवन शैली है, और इससे उनको आकर्षित होना चाहिए। और इसका जो मुख्य सिद्धांत है कि हमारा जीवन बहुत सरल होना चाहिए, जितना ज़्यादा हमारा जीवन सरल होगा उतना हम अच्छे ढंग से अपने समय को, अपने जीवन को भक्ति में लगा पाएंगे। ये पूरा वैदिक संस्कृति का आधार था। तो इसलिए कई बार भक्त लोग इस आधुनिक समाज में आकर वो भी भटक जाते हैं, वो अपनी तुलना बाहर के लोगों से करते हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसे स्कूल में जाए, हमारे बच्चे भी ऐसी पोशाकें डालें, वो भी मॉडर्न कहलाएं। क्या मॉडर्न है? जो समस्याएं सतयुग में थी वही समस्याएं आज हैं, वही आहार निद्रा भय मैथुन है, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, कुछ मॉडर्न नहीं है। समस्याएं भी वही हैं और हमारी आवश्यकताएं भी वही हैं। इसलिए हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, आज के इस आधुनिक समाज की तड़क भड़क को देखकर हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, और जो इस शरीर के पालन के लिए हमें जो धन अर्जन करना है उसको हम जितना से ज्यादा सरल रखेंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और विशेषकर जो माता जी लोग हैं, स्त्रियाँ हैं, उनको ये प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे ढंग से समझना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि स्त्री पुरुष का भेदभाव है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, हर एक का एक अलग स्वभाव है, और उस स्वभाव को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस ढंग से हमें समझकर कोई कंपटीशन नहीं है इसमें, बल्कि कॉपरेशन है, ताकि सब एक दूसरे की मदद करें भगवान की भक्ति में। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या कमेंट्स या क्वेश्चंस?
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया प्रभु जी, हमारे जो समाज में चार वर्ण है और जो शूद्र है, जो शूद्र का जो स्वभाव है अन्यों की सेवा करना होता है, सभी वर्ण में सभी सेवा कर रहे हैं समाज की, लेकिन जो शूद्र है वो अन्य की सेवा करता है, देखा जाए तो सबसे बड़ा कार्य कर रहा है। जो दूसरे वर्ण जो ब्राह्मण जो कार्य कर रहा है, अक्षरीय जो कार्य कर रहा है, वो उनकी सेवा कर रहा है शूद्र, तो फिर भी समाज में ना शूद्र को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, तो इस थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
ये गलत है, पहले समाज में निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता। हर एक अपना रोल है, पांव का रोल है, सर का भी रोल है, पांव भी चाहिए सर भी चाहिए। शूद्र की तुलना पांव से की गई, ब्राह्मण की तुलना सर से की गई, दोनों का रोल है। लेकिन जो सर है वो दिशा दिखाएगा पांव को किस दिशा में चलना है, इसलिए सर को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन सर दिशा दिखाता रहे लेकिन चलने को पांव होंगे ही नहीं तो चलेगा कैसे, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। ये तो जो जातिवाद है ये उसका वर्णाश्रम का विकृत रूप है, इसलिए आज के समाज में शूद्रों को गलत दृष्टि से देखा जाता है। अन्यथा भागवतम के सप्तम सातवें स्कंध में जो शूद्रों के गुण बताए गए हैं वो हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हम तो कहीं वो भी नहीं है। ऐसे शूद्र ऐसे नहीं कि उनका गुण नहीं, उनके पूरे गुण होते थे, उनके अंदर अच्छे गुण होते। यस माता जी, आज के टाइम में या तो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसलिए बताया कि ज्यादा देर तक पति के बिना नहीं रहना चाहिए, ज्यादा समय तक पति के बिना नहीं रहना चाहिए। और वर्किंग आउटसाइड कैन बी स्टॉप्ड, और इन द एब्सेंस ऑफ पति के अनुपस्थिति में ज्यादा साज सजावट नहीं होनी चाहिए, है ना। एज सच पूरी की पूरी वैदिक संस्कृति को आज को हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब्रप्टली तुरंत हम लगाते हैं, लेकिन जितना हम प्रयास कर सकते हैं, जितना क्लोज रह सकते हैं उसके उतना अच्छा है। और हाँ जी, ट्रेनिंग, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः, एकदम अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ जी, यस यस यस, ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता।
हरे कृष्णा बेटी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया। जी मेरा क्वेश्चन इसमें यह था, जैसे वुमेन लिबरेशन के ऊपर बहुत ही हॉट मैटर चल रहा है एकदम हर जगह पे पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसमें बोला तो जाता है कि कुछ लोग जो थे एक सो कॉल्ड जो उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे उन्होंने ही शुरुआत करी थी, पर आज की डेट में हम देखते हैं कि कई सारे एनजीओज भी हैं उनमें वुमेन्स ही वुमेन्स की लिबरेशन के लिए बहुत आगे बढ़कर बोलते हैं। तो एक्सप्लोटेशन तो ऐसा नहीं है कि अभी शुरू होगा, चल ही रहा है, दिख भी रहा है उनको, तो वाई दे आर मतलब वुमेन वुमेन को एक्सप्लोइट करने के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको, उसको इसके लिए ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए और लिबर्टी मांगिए इस तरह से।
हाँ, अज्ञानता है, अज्ञानता वश, वो सोच रहे हैं कि ऐसे एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा मिसनोमर है, इसको बेचारों को और शोषण हो रहा है और समाज की स्थिति और गलत दुर्गति होती जा रही है उनकी, तो और कुछ दुर्गति हो रही है।
कितना एक्सप्लॉयटेशन,
हाँ वो समझ नहीं आ रही ना, और जो पूरा मीडिया है, पूरा प्रोपेगेंडा है, उसमें बह रहे हैं सब, और अज्ञानता से, और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बोले ये तो उल्टा हो रहा है। पहले कहाँ वो रानी रहती थी, अब नौकरानी बन गई है, और नौकरानी से नौकरानी बन गए और बोली कि मैं ज़्यादा लिबरेट हो रही, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। वो सोचते हैं बस केवल धन कमाना इंडिपेंडेंस, उसके लिए वो किसी भी तरह के कंप्रोमाइज करने को तैयार होने, टू बैड, तो अज्ञानता के कारण है।
एक क्वेश्चन और ये था, जैसे भी बताया कि इसमें 900,000 सर्वेंट्स दिए थे, अभी जो अर्थ की टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 7.5 अरब ही है, तो एक ही राजा के पास इतने सारे वो मतलब उनको दे रहा है, तो एक पूरा पृथ्वी दे रहा है उनको दान में।
तो ये जो वैदिक इस प्रकार के शास्त्रों के तथ्यों को हम इस बुद्धि से नहीं समझ सकते, और वहाँ एक अलग ही डायमेंशन होती थी, एक अलग युग की बात है, एक अलग डायमेंशन हैं, इसको हम इस बुद्धि से, थ्री डायमेंशनल बुद्धि से नहीं समझ सकते, एक अलग डायमेंशन है। और इसको हम बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि ये अतोष्यक्ति है या माइथोलॉजी है, क्योंकि भागवतम में बाकी सब चीज़ें जो बताई गई हैं वो बहुत सूक्ष्म हैं, तो अगर इतना नंबर दिया गया है तो गिन के दिया गया है, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया गया। हाँ माता जी, आखिरी प्रश्न, बाहर कैसे ढूंढते हैं, तो ये कम करना है। हमारे अंदर भी दोनों चीजें हैं, अध्यात्मवादी प्रवृत्तियां भी हैं, भौतिकवादी प्रवृत्तियां भी हैं। तो जैसे जैसे हम साधना अच्छे ढंग से करेंगे, हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और भौतिक प्रवृत्तियां कम होती जाएंगी। तो साधना इसीलिए है कि साधना को अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारे अंदर देवी संपदा बढ़ेगी और आसुरी जो गुण है वो कम होंगे। प्रभु जी का प्रश्न है कि जो कंस की प्रेम है वो अंत में भावुकता निकले, एक भविष्यवाणी हुई बिल्कुल बदल गया, तो कैसे हम किसी के रिलेशनशिप में समझे केवल भावुकता है या असली प्रेम है? तो समय बता देगा, समय बता देगा कि उल्टे समय में भी कैसे समय में भी वो ठीक हुआ मालूम चल जाएगा। नहीं, वो तो एक तो हमारा एक्सपीरियंस भी होगा अनुभव से, और फिर समय बताते हैं हमें। कई बार हम भी सब भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन समय मालूम चलता है कौन असली मित्र है कौन भावुकता है, समय से पता चल जाता है। हाँ, साथ होते हैं। तो हर चीज पहले से पता नहीं चलेगी, कई बार एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए दूसरे के, हमें अपने अंदर ये ला सकते कि दूसरे का सपोर्ट मिले या ना मिले, मिल जाए तो भी अच्छा है, नहीं मिले तब भी अच्छा है, तो फिर हमें धोखा कम लगेगा। हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। यस माता यांत, यही तो बात है माताजी, हम भक्तों का जो व्यवहार है वो आम व्यक्तियों से अलग होना चाहिए, तभी हम समाज में इसको स्थापित कर पाएंगे। दुख की बात है जो भक्त लड़के हैं वो भी कहते हैं वर्किंग डिवोटी वाइफ चाहिए, पूरा कल्पवृक्ष चाहिए उसको, वो पैसा भी कमाए, घर का काम भी करे, ऑफिस में भी जाए, धन भी कमाए, पूरा कल्पवृक्ष चाहिए। तो कैसे हुआ? और माता पिता को भी लगना चाहिए, शादी हो या ना हो, मेरी बेटी है, मैं इसको प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार इसका पालन पोषण करूंगी, इतना कन्विक्शन होना चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे, उसके लिए योग्य वर भेजेंगे। और जो हमारे युवक भक्त लोग हैं उनको भी कन्विक्शन होना चाहिए कि हमारे माता पिता जो मर्जी करें, जो मर्जी समाज में प्रेशर डालें, मुझे एक गृहिणी चाहिए जो अच्छे ढंग से बच्चों का पालन पोषण कर सके, अन्यथा इस ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ? फिर वही वही धारणाएं बने रही, पैसा पैसा पैसा, क्या फायदा होगा उसका? तो यही तो कल्चर है, यही तो हमें दिखाना है, और हम दिखाएंगे लोगों को, दिखा सकते हैं कि देखो इस तरह का जो मॉडल है इसमें पति पत्नी ज्यादा खुश हैं, उनके बच्चे अच्छे ज्यादा सुसंस्कृत हैं, अच्छे सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं। तो ये मॉडल जब दिखाई देगा फिर बाकी लोग बोलेंगे हम भी ऐसा करते हैं, हम उनकी तरह कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर चलते चलते माला कर रहे हैं। खाली खाली माला दिखाने से, तिलक लगाने से हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे? नहीं, हमारी चेतना को आगे करना है। तो इसका विश्वास ही नहीं है भगवान की बातों में ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो माताओं को बिल्कुल काम बंद कर देना चाहिए, ठीक है वो पढ़ी लिखी है, कुछ करना है, इतना नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसा कैरियर ओरिएंटेड ना हो कि कैरियर ही है सब कुछ, घर में बैठे बैठे भी कुछ धन अर्जन कर सकते। ऐसे नहीं कि वैदिक संस्कृति में माता जी लोग कुछ करती नहीं थी। हम देखते हैं कि भगवान के लीला में आता है कि फूल फल वाली आती है, भगवान को फल बांट रही है, गोपियां मक्खन लेके जाती थी मथुरा में, दही बांटती थी। ऐसा नहीं वो काम नहीं करती थी, लेकिन ऐसा नहीं करती थी कि केवल धन ही कमाना उद्देश्य है। तो थोड़ा सा घर में रह के कुछ ऐसा करके, लेकिन मुख्य उद्देश्य होना चाहिए घर को संवारना, और यही ट्रेनिंग देनी चाहिए वरिष्ठ माताओं को, युवतियों को, और युवतियों को भी ऐसी ट्रेनिंग, और युवकों को भी यही ट्रेनिंग, तब जाके हम एक अच्छा मॉडल दिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो किसी की भावनाओं में ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, ये टॉपिक बड़ा हुआ है। माता जी लोग विशेषकर कोई गलत ना समझे। तो आपका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गोप्य मनंदे।